आज की मुरली रिपीट करेंगे पहले। उससे पहले बाबा की एक बात, दो तीन दिन पहले की, शरीरी होने का अभ्यास भाग्यवान बच्चे ही करते हैं चलते फिरते। याद है ये बात, पहली लाइन में थी। आज की मुरली, हम बाबा की इज्जत रखते हैं, कौन से बाबा की इज्जत रखते हैं हम, सबसे अच्छी बड़ी सेवा कौन सी है, और भारत को स्वर्ग बनाना, मनुष्य को देवता बनाना। और बोलो, अब तो याद आने लगी होगी, और आगे बोलो पॉइंट्स। गीत कौन सा था, ये मुरली अगर आप टेप रिकॉर्ड हुई सुन लें, आनंद आ जाए। क्यों, ये मुरली जब चली थी ब्रह्मा बाबा साकार में, ब्रह्मा बाबा जैसे डांस कर रहे थे, आखिर वो दिन आया आज। तो बहुत मुरलियों में 68 की मुरली हैं, उनका जो नशा था ना लास्ट का, वो झलकता है क्लियर। बहुत आनंद भरी ये मुरली। अभी तो थोड़ा छोटी भी कर दी, और वो तो पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है, वो कैसे पढ़ते हैं। और कोई पॉइंट याद है, ड्रामा को याद करके अपार खुशी में रहो, सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान को याद करके। बोलो क्या होगा आगे, खुशी में भी रहेंगे और चिंतन बहुत अच्छा रहेगा। गीत सुना अभी जो बजा था, योग में कोई सुनते हैं कोई नहीं सुनते, अलग अलग स्थिति तो होती है, कोई योग में दूसरे ढंग से बैठते हैं तो कोई गीत का भी आनंद लेते हुए योग करते हैं। बहुत अच्छे शब्द, ये गीत हमें सुख देते हैं, लेकिन किन्हें, जो श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं। ऐसा रिदीपन का अभ्यास भाग्यवान आत्माएं ही करती हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें एक हफ्ते 10 दिन में मुरलियों में आ गई हैं। इसमें ऐसा दीदी होने से क्या क्या फायदे होते हैं याद करो। बाबा ने अब तक जो कुछ सुनाया है, अव्यक्त में भी साकार में भी, जो आत्मिक स्मृति का तिलक लगा कर रखते हैं उन्हें राजाई का तिलक लग जाता है साकार मुरली से। बड़ी रहस्य भरी बातें हैं ना, जो आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे उन्हें रजाई मिलेगी। समझते हैं सभी भाई, आज भाई बहुत हैं, क्या बात भाई छोटेलाल, आज भाइयों की संख्या कहाँ से आ गई इतनी। अच्छा भट्टी वाले भी हैं, सुख ले रहे हैं खूब मधुबन का। मैंने कहा आज आया तो माताएं थोड़ी सी गीता पाठशाला और भाइयों की पूरी। माताएं बेचारी बूढ़ी भी हो गई, कमरों से आने में भी देर लगती है। शरीरीपन, आज का वरदान रिपीट करें कोई एक, सबके ऊपर स्नेह का राज करो तो विश्व का राज मिल जाएगा। छोटी सी बातें नहीं है, ऑर्डर का राज नहीं, यहाँ राजा न बनो। कई लोग करते हैं ना अपने अपने घरों में, अपने अपने डिपार्टमेंट में, मैं इंचार्ज हूं, इससे गड़बड़ हो जाती है, अहम आ जाता है और हमारा संगठन टूट जाता है। और ये नशा घर में भी, मैं घर की बड़ी हूं, मेरे बिना पूछे पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। है किसी माताओं को ये संकल्प? किसी को तो बताओ, बताया तो नहीं जा सकता, खैर लग जाएगी। पर कईयों में होता है, कई भाइयों में, कई माताओं में, घरों में, मेरी आज्ञा के बिना कुछ नहीं होना चाहिए। क्या परिणाम होता है इसका? टेंशन। अब माताएं बोलेंगी परिणाम गुह्य बातें हैं, ये जाननी चाहिए सबको, लोग इसको जानते नहीं है, इसलिए राज करना चाहते हैं एक दूसरे पर। बोलो क्या नुकसान होगा? कुछ दिन तो राज चलेगा और कुछ दिन के बाद सब हाथ से निकल जाएंगे, सब हाथ से निकल जाएंगे। ये ऑटोमेटिक है, मनुष्य की नेचर है, किसी भी मनुष्य को बहुत दबाया नहीं जा सकता। कई उनमें से बुद्धिमान भी हो सकते हैं, कई उससे ज्यादा ताकतवर भी हो सकते हैं, कई चालाक भी हो सकते हैं कि उसको नचाने लगे। इसलिए कैसे राज करना चाहिए? स्नेह से, आत्मिक दृष्टि रखते हुए। एक माता की कहानी में कभी कभी सुनाई है, बाबा ने जब क्रोध मुक्त होने के लिए शिवरात्रि पर ये गिफ्ट मांगी थी, बाप का बर्थडे है तो कुछ गिफ्ट तो दोगे, तो क्रोध दे दो। एक सेंटर पर बहनों ने सबसे ये गिफ्ट मांगी, सबने दे दी। एक माता ने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगी। क्यों नहीं दूंगी? मेरी तीन बहुए हैं, बेटे हैं तीन, उन पे मैं राज करती हूँ क्रोध से। अब यही मैं छोड़ दूंगी तो मेरा तो राज चला जाएगा। बहनों ने समझाया कि भगवान ने गिफ्ट मांगी है, किसी मनुष्य ने नहीं। अच्छा चलो एक हफ्ता दे दो, फिर राज करते रहना। एक हफ्ता के लिए उसे प्रतिज्ञा करा ली। घर में गई, जो माता चुप नहीं बैठती थी, ये काम ऐसे क्यों किया, ये बिगाड़ दिया, मैं नहीं थी, देखा सब बिगाड़ दिया। बहुएं डरी डरी सारा दिन काम करती थी, फिर डांट भी सुनती थी सारा दिन, काम भी पूरा करती थी और इनाम में माताएं बोल नहीं रही, क्योंकि करती होंगी कई। अब चुप माता जी। एक दिन बीता, आराम से काम हो रहा है, दूसरा दिन, तीसरा दिन। अब बच्चों ने सोचा भाई कुछ तो गड़बड़ है, तो एक बच्चा जो थोड़ा सा माँ से बात कर सकता था, बाकी तो डरते थे, उन्हें कहा माता जी क्या हो गया, तीन दिन से चुप चुप हो। अब वो हंसने लगी कि बेटा मैंने अपना क्रोध भगवान को दान दे दिया है, छह के छह पे इतना अच्छा असर पड़ा कि जिन्होंने हमारी माँ का क्रोध छुड़ा दिया, हम माँ चलेंगे। आज तक नहीं आते थे, आए, कोर्स किया, ज्ञान में चलने लगे, एक की जगह सात हो गए। अब बताओ राज क्रोध से हुआ या शांति से? क्रोध छोड़ने से हुआ। ये बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। कोई भी रोब से राज करे, क्रोध से या अहंकार से राज करे, उसको स्वयं को बहुत टेंशन होगी, मजा नहीं आएगा। और यही घटना एक डायरेक्टर की उससे पहले की है। उससे पहले बाबा ने एक छह मास के लिए क्रोध मुक्त होने का अभियान चलाया, बहुतों ने छोड़ा, बहुतों ने प्रतिज्ञा की। एक डायरेक्टर ने आके अपना अनुभव सुनाया था शांतिवन की स्टेज पे, कहा मुझे बहुत गुस्सा आता था, डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, सब मेरे से डरते थे, सारा दिन मुझे शाउटिंग करना, शाउटिंग माना चिल्लाना पड़ता था उन पर। जज साहब भी आ गए, भाई आओ देखो। तो फिर क्या हुआ? चुप, पहले दिन से चुप। सबने सोचा आज तो साहब चुप हैं, दूसरा दिन भी चुप। लोगों में आवाज फैल गई कि लगता है घर में कुछ ट्रेजडी हो गई, किसी की मृत्यु हो गई है, गड़बड़ हुई है। अब कोई जाने का साहस न करे, सब डरते थे। तीसरे दिन भी चुप। आखिर एक ऑफिसर आया हिम्मत करके कि सर कुछ हो गया है क्या, हम मदद करें, हम सब आपके साथ हैं। उसने भी हंसा के नहीं भाई, मैंने क्रोध का दान कर दिया, मैं क्रोध नहीं करूंगा। फटाफट हवा की तरह ये आवाज पूरे डिपार्टमेंट में फैल गई। क्या हुआ होगा? बोलो क्या हुआ होगा? और कुछ? प्यार और सम्मान इतना बढ़ा, सारे ऑफिसर आ गए कि सर आपको हम मौका ही नहीं देंगे कि आपको क्रोध करना पड़े, और काम सभी जिम्मेदारी से करने लगे। तो किससे राज हुआ? अब देखिए, क्रोध से वो भी टेंशन में रहता था, सब भी और डिपार्टमेंट में वाइब्रेशंस डरावने। किसी दिन साहब नहीं आए तो सब आनंदित हैं, तो किसी के आने से खुशी होती है, किसी के बोलो माताएं, किसी के आने से खुशी, किसी के आपका क्या हाल है? पहले माताओं से पूछता हूँ, आने से खुशी या जाने से कैसा बनना चाहिए हमें? कि हमारे आने से सबको खुशी हो, जाने से दुख हो। दुख तो की तो बात नहीं, पर अच्छा ना लगे। ऐसा हमें अपनी नेचर बना लेनी चाहिए। पसंद है भाइयों को? कई बाप ऐसे होते हैं कि घर में गए और बच्चे चूहे की तरह बिल में भट अंदर चले गए, पापा आ गए, खतरा हो गया। अब किसी को भी ऐसा हो वो भी अपने को हल्का करें। मैं आपसे पूछता हूँ, बट्टियों में जो एक प्रश्न पूछते हैं हम, बाबा का बनने के बाद किस किस ने बहुत क्रोध छोड़ दिया है? हाथ उठाओ। बहुत जिसने छोड़ दिया, थोड़ा है कोई बात नहीं, उठाओ। डर डर के उठा रहे हैं, धीरे धीरे। बहुत बहुत, अरे वाह, वेरी गुड। आपको तो इनाम मिल जाना चाहिए फिर, जज साहब को है ही नहीं भाई। तो कितनी अच्छी बात है ये, बाबा के बच्चों में ही ये ताकत है। मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं छूटेगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने हजार लोगों का सर्वे किया, देखा बचपन से ही क्रोध है, मरने तक क्रोध है। तो एक निर्णय दे दिया, किसी का छूटेगा नहीं। पर हम एक चीज जानते हैं बहुत अच्छी तरह, संस्कार बदले हैं या नहीं? अच्छे से बुरे हुए हैं तो बुरे से अच्छे भी होंगे, सब कुछ बदलता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि बदलता नहीं है, वो गलत है। एक सुंदर बात और सुनानी आपको, सेवा में काम आएगी। लोग हमसे भी और क्लासेज में भी और विंग्स में भी प्रश्न कर लेते हैं कि डार्विन थ्योरी, भाई लोग तो बहुत जानते हैं, विकास हुआ है। मोटे रूप में बंदर से हम मनुष्य बने हैं, डार्विन ने तो और छोटा बताया, अमीबा और कहां कहां से विकास हुआ है, हम बंदर बने हैं। जगदीश भाई ने इस पे बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी थी, हम तो उन्हें बता देते थे कि ऐसा नहीं हुआ है। किसी ने बहुत अच्छी बातें सुनाई, हर चीज में गिरावट आती है, किसी का भी विकास नहीं होता है। सतयुग से हम चले थे, देवता थे, क्या हुआ? फिजिक्स के आधार से, फिजिक्स विज्ञान, अगर एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा रख दें तो हजारों साल में वो समाप्त हो जाएगा, आप ही रखा रखा। उसकी एनर्जी धीरे धीरे निकलती रहेगी, उसे छोटे छोटे कण बाहर निकलते रहेंगे। हर चीज में पतन होता है, बंदर से मनुष्य बन ही नहीं सकता, विकास हो ही नहीं सकता। वकीलों का जब प्रोग्राम था अभी, तो एक वकील ने यही प्रश्न किया, तो मैंने थोड़ा उत्तर दिया, लेकिन एक बहुत अच्छा वकील खड़ा हुआ और उसने कहा, एक बात मेरे पास है, मैं सुनाता हूँ। कहा, वैज्ञानिकों ने मनुष्य का और बंदरों का डीएनए चेक किया है। डीएनए होता है एक मेडिकल विज्ञान में, कहा दोनों में कोई समानता नहीं, बंदर मनुष्य बन ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। मुझे बहुत अच्छी बात मिली है, और बाबा ने तो सीधा ही कह दिया कि तुम सभी बंदर बन गए थे, तुम्हें देवता बनाने आए, मनुष्य बनाने आया हूँ, अच्छी बात तो ये है सस्ती। तो हम सभी विश्व की सेवा कर रहे हैं, और हमें दूसरों पर राज करना है, कैसे? स्नेह से, प्यार से। और हमारे प्यार में और दुनिया वालों के प्यार में कुछ अंतर है। एक बाप भी अपने परिवार से बहुत प्यार रखता है, माँ भी रखती है, और हम जब प्यार रखते हैं तो क्या अंतर है? स्वार्थ नहीं होता है। और कुछ गहरी बात सुनो, हमारा रूहानी प्यार है और कल्याणकारी प्यार है, और एक ऐसा प्यार है कि जन्म जन्म के बिछड़े हुए हम सब मिले हैं पुनः। हम में से कई लोग न जाने किस किस जन्म में साथ रहे हों, किस किस संबंध में रहे हों। तो एक चीज और मैं आप सबको कहूंगा, अपने जीवन में, ये बात पुरुषार्थ की नहीं है, हम उन सबको भी धन्यवाद दे दें जिन्होंने 84 जन्मों में हमें साथ दिया हो। सहयोग भी तो दिया होगा ना, बुराई थोड़ा ही किया सबने, अच्छे भी तो बहुत मिले हैं ना हमें। अच्छे साथियों को दिल से धन्यवाद। और दूसरा धन्यवाद देंगे प्रकृति को, इसको अपना गुड फ्रेंड समझ लें सभी। अभी से अपने मन में एक श्रेष्ठ शुभ संकल्प कर दें, ये संपूर्ण प्रकृति हमारी गुड फ्रेंड है, मित्र है, सच्चा मित्र, ये हमारी सहयोगी है, हम इसके मालिक हैं, वो एक बड़ी चीज हो गई, स्वमान की बात है। लेकिन ये हमारी सच्ची मित्र है, जन्म जन्म इसने ही तो पालना की है, सारे शरीर भी तो इसने ही हमें दिए हैं। मेडिकल साइंस वालों से एक और सुंदर चर्चा हमें जानने को मिली, हालांकि मैं इसको जानता था, लेकिन एक बड़े डॉक्टर ने कहा तो मेरी जानकारी में जरा स्टैंप लग गया, तो मैं सुना सकता हूं कहीं, मैं ये सुनाता नहीं था क्लासेज में। मैंने कहा पता नहीं कोई कहेगा, मैं पता नहीं कहां से नई नई बातें लाने लगता हूं। उसने कहा, बहुत सीनियर डॉक्टर था, कहा हमारी मेडिकल साइंस तो कहती है कि सारे जो बीमारी हैं, सारी बीमारियां मन से प्रारंभ होती हैं। उसने कहा हमारे मन में इतनी शक्ति है कि अगर हम उसे डायरेक्शन दें, भोजन खाया है उसकी शक्तियां बनेंगी ना, तुम यहां जाओ, वो वहीं जाएंगी। मान लो किसी का हार्ट कमजोर है, तुम हार्ट की तरफ जाओ सारी शक्तियां, तुम लीवर की तरफ जाओ, तुम किडनी की तरफ जाओ। कहा ये रिसर्च हो चुकी है, पर जो दवाइयों की कंपनियां हैं वो इसको बाहर नहीं आने देती, क्योंकि उनके सारे कारोबार ठप हो जाएंगे, क्योंकि सब कुछ कॉमर्शियल हो गया ना। तो मैंने एक चीज पढ़ी थी बहुत समय पहले, छोटे छोटे लेख आ जाते हैं कभी कभी अखबार में, बहुत अच्छे मेरे हाथ लग जाते हैं, वो मेरी नजर में आ जाते हैं। आप ही सब कॉन्शियस माइंड जिसकी हम चर्चा करते हैं, अंतर मन, उसने लिखा था कि गर्भ में शरीर के निर्माण में अंतर मन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अंतर मन न छोड़ दो, मन की। अब मन को ये पता है कि गर्भ में कहां क्या कमजोरी गड़बड़ हो गई है, ये उसे पता है। इसलिए अगर सोने से पहले हम अपने मन को संकल्प दे दें, अब मैं इसको गहरा न बना के सिंपल भाषा में कर रहा हूं, मन को संकल्प, मन में ही संकल्प उठेगा, अंतर मन में जाएगा। अब हम अपने अंतर मन को संकल्प दे दें, मेरा लीवर पूरी तरह ठीक हो गया है। मान लो किसी को लीवर की गड़बड़ है, तो अंतर मन को पता है कि गर्भ में लीवर में कहां गड़बड़ रह गई थी, वो उसे शायद रात ठीक करेगा। बड़ी सूक्ष्म नॉलेज है ये। इसलिए अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए हम सोते समय 5-7 बार गहराई से संकल्प कर दें, मैं पूरी स्वस्थ हूं, मेरा हर सेल बहुत एनर्जेटिक है। माताएं भी समझ लें, शरीर में कोशिकाएं हैं, छोटे छोटे जीन्स हैं उनमें, वो सब बहुत ताकतवर हैं, एनर्जेटिक माना बहुत ताकतवर हैं, स्वस्थ हैं, शक्तिशाली हैं, वही तो शरीर को ठीक रखते हैं ना। तो अंतर मन सारी रात वही काम करेगा, हार्ट की बीमारी है, ब्लॉकेज हो जाते हैं, यानी बंद हो जाती हैं, जहां से खून जाता है ना वो नलियां बंद हो जाती हैं, खून बंद हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। संकल्प कर दो मेरा हार्ट बिल्कुल ठीक है, उनको आर्टरी कहते हैं इंग्लिश में, वो नसें जो हार्ट को जा रही हैं वो बिल्कुल साफ हैं, क्लीन हैं। तो देखो जहां ब्लॉकेज माना जैसे पाइप में अंदर कोई पत्थर फंस जाए, पानी रुक जाएगा ना, तो अंतर्मन को वो संकल्प हमने दे दिया, अंतर्मन सारी रात उस पत्थर को हटा देगा। तो ये स्वस्थ रहने की मन की शक्तियों का प्रयोग है। तो हम मन की शक्तियों पर बहुत ध्यान देंगे। देखो आज तक भक्ति में भी जो योगी हुए हैं उन्होंने भी कई अच्छी अच्छी शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। सत्य घटनाएं हैं, काल्पनिक नहीं। मैंने एक की घटना पढ़ी, मेरे पास एक किताब आई थी भारत के प्राचीन योगी, 5 किताबें हैं वो, उसमें थोड़े प्राचीन काल से और थोड़े 200 250 300 500 साल और थोड़े अब के ऋषियों का सन्यासियों का वर्णन है। एक नाम है उसका स्वामी तेलंग स्वामी, त्रिलंग स्वामी, क्योंकि वो तेलंगाना से आया था। 90 साल की आयु में उसने सन्यास लिया, 90, और वो जिया 250 साल, और वो रहा काशी में। बिल्कुल प्रैक्टिकल नजदीक की घटना, कोई काल्पनिक नहीं कि हजारों साल पहले की है। मुश्किल से 70-80 साल या 50 साल पहले उसने शरीर छोड़ा है, उसका लिखा है पूरा लोगों ने। उसके पास बहुत शक्तियां थी, उसको मस्त रहता था, कुछ भी पहनता नहीं था, बहुत बड़ी सिद्धियां। उसका वर्णन किया गया कि काशी नरेश के पास किसी देश का राजा आया, अभी उसको घुमाने के लिए वो गंगा में ले गए, मेरा फोन भी आज खुला रह गया, उसको घुमाने के लिए वो गंगा में ले गए एक सुंदर नाव, राजाओं की नाव बहुत सुंदर, नाव में दोनों राजा और 2-4 उनके परिवार वाले नाव में जा रहे थे गंगा में। अब ये सन्यासी नाव पे ऐसे पैर मोड़कर बैठा हुआ पानी पर आ रहा है, वो नाव में है। इन्होंने देखा राजाओं ने, ये कौन है? काशी नरेश को पता था, उसने कहा ये एक बहुत बड़ा महात्मा है। उसने नहीं माना, कि ये सब ऐसे कैसे होता है, कुछ जादू टोना करता होगा। आ गया उनके पास, कहा राजन अपनी तलवार देना, तलवार दे दी, उसने नदी में फेंक दी। अब ये बड़ा परेशान हुआ राजा, मेरी सोने की मूर्ति, बहुत सुंदर तलवार, ये सब इसने नदी में, गुस्सा करने लगा और वो फिर चल दिया पानी के ऊपर ही, तेजी से आगे निकल गया। अब ये क्या करे, बंदूकें तो होती नहीं थी उसको मारे, और वो तो समय भी नहीं था। 2 मिनट में फिर आ गया, उसने गुस्से में कहा मैं तलवार दो, उसने पानी में हाथ ऐसे किया लो, और बहुत सारी चीजें कही है। उसको पागल समझ के लोगों ने शिकायत की, थानेदार ने उसको बंद कर दिया कोतवाली में। अब वो तो ताला लगा के चला गया, अब देखा सवेरे आया तो छत पे घूम रहा है। अपने सिपाहियों पे बहुत नाराज हुआ, तुम सब ध्यान नहीं देते, सो गए होगे, डांटा डपटा के कहे नहीं साहब, हम तो जगे हुए थे, अब लोग कहते हैं ये बहुत बड़ा महात्मा है, कि नहीं मैं देखता हूँ। खुद ताला बंद किया, खुद पहरा देने लगा, थोड़ी बहुत आंख लग गई होगी, जब उठा तो देगा फिर वो छत पे घूम रहा है। फिर लोगों ने कहा ये पागल नहीं है, बहुत बड़ा महापुरुष है, छोड़ो इसको, तब उसको सम्मान सहित विदाई दी। देखो छोटी सिद्धियां, 300-250 साल जिया। ये आयुर्वेद में भी काया को कल्पित करने की रसायन विद्या है, जादू टोना नहीं, रसायन विद्या है, केमिस्ट्री है ये, ऐसे चीजों को मिलाकर दवाई बना दी जाती है। उसको खा ले तो मनुष्य की शरीर की स्थिति वहीं रह जाएगी जहां वो है, 25 साल का तो 25 का ही रहेगा। एक और उसका नाम भी बाबा था, बाबा ही कहते थे उसको, वो भी बहुत साल जिया और उसकी आयु 25 साल ही रही। एक माता को मैंने ऐसे ही पता नहीं कहां क्लास में जिक्र कर दिया, तो एक माता आई मेरे पास, नजदीक की बात है, कहा मेरा भी गुरु वही था, अब 5-6 साल पहले उसने देह छोड़ा है, वो भी 250 साल जिया, 25 साल का रहा सदाई। तो ये शक्तियां क्या हैं, ये मन की शक्तियां हैं सब। उनका योग ऊपर तो नहीं था ना, लेकिन मन को इतना नियंत्रित कर लिया और मन में ये सब शक्तियां हैं, उनको ही सिद्धि कह देते हैं। तो हम सभी बहुत ध्यान दें, अपने शरीर को ठीक करना हो, परिवार को बहुत अच्छा करना हो, बच्चों को बहुत अच्छी राह पे चलाना हो, सब अपने मन की शक्तियों पर ध्यान दें। इसको एक विशेष खजाना माने सभी, जैसे हम अपनी अनमोल चीजों को, देखो आपके पास कोई बहुत अच्छी ज्वेलरी है, जेवर है, आप उसे ऐसे ही तो नहीं रख देंगे खुली अलमारी में, कितना संभाल के रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, कपड़े में लपेट के उसकी अलग डब्बी है उसमें रख के फिर अभी अंदर रखेंगे किसी में लोग। हम अपने संकल्पों को विशेष खजाना मानकर महत्व दें, जिस चीज को हम महत्व देते हैं उसकी बचत करते हैं ना। पैसा कोई एक गरीब व्यक्ति 10,000 कमाता हो मास में, परिवार हो उसको, अब उसकी स्थिति देखो आप में से भी कोई बैठे होंगे, कैसे वो खर्च करता है, कैसे 10,000 में अपने परिवार को चलाता है, और ये भी सोचता है कि इससे 1,000 बचा भी लूं, सोचता है या नहीं। हम भी अपने संकल्पों को जितना बचाएंगे उतना ही मन में श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट कर पाएंगे, रच पाएंगे। जो लोग व्यर्थ में रहते हैं वो सुंदर संकल्प नहीं रच पाते मन में, इसलिए पुरुषार्थ में योग में आनंद भी अनुभव नहीं होता है। सभी इस बात को जान लें, हमारे जीवन का आनंद, योग का आनंद, पुरुषार्थ का आनंद हमारे श्रेष्ठ संकल्पों की रचना पर निर्भर करता है। आज का स्लोगन भी था ना, थकान हो तो डांस करो, पर थका हुआ मनुष्य डांस करता है? अब भगवान ने तो कह दिया कैसे करेंगे डांस, सुंदर संकल्प होंगे तब तो डांस करेंगे, और अगर सुंदर संकल्प रचने की कला आ जाए तो थकान होगी भी नहीं। थकान यहाँ स्थूल नहीं बात, शरीर तो थकता ही है, पर मनुष्य पुरुषार्थ करते करते थकता है, माया के युद्ध में थकता है, समस्याओं के विकराल रूप होने से थक जाता है, घर में कोई परिवार वाले बार बार अपमान करें, निराशा मिले, कुछ और चीज बुरी होती रहे, तो वो मन को थकाती हैं। अगर हमारे मन में अच्छे संकल्पों की रचना होगी तो हम मन से थकेंगे नहीं। तो करेंगे सभी प्रैक्टिस है शरीर होने की, मैं 8 विधि बता देता हूं। माताएं तो डायरी पेन कम लाई होंगी, जो लाए हैं लिख लो 8 विधि। उठते ही कौन सा संकल्प करें, बाबा बहुत बताते थे साकार में भी, आप बोलेंगे तो कईयों को याद हो जाएगा। मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई हूँ, देखेंगे अपने को ऊपर से उतरता हुआ, इसको अंग्रेजी में कहते हैं विजुअलाइजेशन। तीसरे नेत्र से देखेंगे, मैं आत्मा परम धाम में, वहां से उतरने लगे नीचे, उतरते देखो, 2-4 सेकंड लगाओ, 10 सेकंड, आत्मा चमकती ज्योति अपना तेज चारों ओर फैलाते हुए उतर रही है, उतर रही है, बैठी यहां। एक अभ्यास, इस पर भी जितना अच्छा चिंतन होगा सुखद फीलिंग, मैं आत्मा इस तन में आई हूं क्यों, बोलो, ये तो मोटा उत्तर है, ये हमें नहीं देना है, थोड़ा अच्छा उत्तर, विश्व कल्याण के लिए भगवान के साथ अवतरित हूं। याद हो मुरली, मधुबन वालों को याद है, एक अवतार जब कमाल कर सकता है, तुम सब इतने अवतार, धमाल नहीं बहुत कमाल कर दोगे, होगा या नहीं। तो मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूँ, जैसे शिव बाबा ब्रह्मा के तन में हुए, सीन बनाओ, ब्रह्मा बाबा स्टेज पर बैठे हैं स्ट्री हॉल में, दृष्टि दे रहे हैं और शिव बाबा ऊपर से आके उनके मस्तक में बैठ गए। ऐसे ही मैं आत्मा ऊपर से उतरी, यहाँ बैठ गई, मैं अवतरित हुई हूँ इस संसार में शांति की स्थापना के लिए, सत्य धर्म की स्थापना के लिए, सबको पावन बनाने के लिए, पवित्र दृष्टि देने के लिए। देखो इतना सुंदर चिंतन होगा तो इस आधे मिनट के अभ्यास का इफेक्ट अब देखना कितनी देर चलता है। इसके बाद जब योग करेंगे तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी और ऐसे योग में जा बैठे मैं आत्मा हूँ, दूसरी क्षण कुछ और हूँ मैं, भूल जाएंगे। एक अभ्यास। दूसरा, अब मैं एक और सुंदर अभ्यास पे चलता हूँ, अपने 84 जन्मों की माला बनाया करें, बड़ी सी माला, 84 शरीर खड़े हैं, 83-84 शरीर खड़े हैं, इधर से शुरू करेंगे दाएं से, देव शरीर 20-21, फिर मानव शरीर, सुंदर सुंदर, कभी राजा हैं, कभी सम्राट हैं, कभी धर्म नेता हैं, बनाओ एक सुंदर माला। और मैं आत्मा धागे की तरह यहाँ से निकली पहले शरीर में, 2 सेकंड 3 सेकंड दूसरे में, 3-3 सेकंड करो तीसरे में, निकालते चलो अपने को, वस्त्र बदलते आ गए वापिस इसमें। पसंद है, मजा आ जाएगा। यह शरीरीपन के अभ्यास अलग से ही कर ले, बाबा को याद तो करना ही है, उसके अलावा ही इसे बहुत फायदे हैं। कर्मेंद्रियां शीतल होंगी, पास्ट के सब पास्ट, पास्ट माना माताओं से पूछ रहे हैं, पास्ट माना जो बीत गया, कोई बुरी चीज, कोई मन को भारी करने वाली बुरी चीज, किसी की मृत्यु हो गई है, आपने जीवन में मृत्यु देखी है, अपने प्रियजनों की उसका दर्द आपके पीछे है, सब इसे शरीरीपन के अभ्यास में समाकर समाप्त हो जाएगा, व्यर्थ एकदम समाप्त, इच्छा ही नहीं होगी, व्यर्थ बुरा लगेगा, क्यों पर चिंतन करें, क्यों किसी के अवगुण देखें, एकदम नफरत होगी, बुरा लगेगा, भारी करेगा, नहीं। तीसरा अभ्यास, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं, मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूं, अपने को सिंहासन पर, भ्रकुटि सिंहासन पर बैठा हुआ देखें, चौथा एक संकल्प, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य भ्रकुटि की कुटिया में बैठी हूँ, ये कुटिया हो गई शरीर और भ्रकुटि की कुटिया में मैं बैठी हूँ, मास्टर ज्ञान सूर्य यानी बहुत तेजस्वी, ड्रिल की बात थी मुरली में, कब थी, कल, याद है ड्रिल, एक्सरसाइज जो करते हैं ना व्यायाम, उनको भी ड्रिल कहते हैं, ये वो है शरीर की ड्रिल, ये है मन की आत्मा की ड्रिल, जैसे उससे शरीर हेल्दी होता है, इससे मन स्वस्थ होता है, तो एक बहुत अच्छी ड्रिल करेंगे, मैं आत्मा शरीर से निकल कर यात्रा करती हूँ परम धाम की ओर, अपने को ऊपर जाते देखेंगे, बाबा के पास पहुंच गए, टच कर दिया बाबा को, मिल गए दोनों कुछ देर, और फिर वापिस आई धीरे धीरे फिर मस्तक में, 10 बार करके देखेंगे, 10 बार तो बहुत है, चित्त एकदम शांत और गहरे आनंद में आ जाएगा, ठीक है, पसंद है माताओं को, सहज बात है ना, इसी से जोड़ दें एक और, बाबा की मुरलियों में रोज आता है, तुम्हारा 84 जन्मों का खेल पूरा हुआ, अब तुम्हें घर जाना है, मैं आ गया हूँ तुम्हें लेने। अब इसमें दोनों सीन देखें, बाबा आ गया है और हम चल दिए शरीर से निकलकर उसके साथ, तो आगे शिव बाबा पीछे आत्मा, दोनों उड़ते जा रहे हैं, बैठ गए परम धाम में। ये ड्रिल हैं अलग अलग। एक और अभ्यास, मैं फरिश्ता हूं, ये भी आत्मा का ही है। आज बाबा की मुरली में एक शब्द बहुत अच्छा था, तुम आत्माएं सूक्ष्म हो दिखती नहीं, तो किससे ढक गई हो, शरीर से ढक गई हो, तुम शरीर ने तुम्हें ढक लिया है। कितने अच्छे शब्द हैं, मैं आत्मा हूं शरीर ने ढक लिया है मुझे। बाबा ये सब अभ्यास कराते हैं, तो मैं फरिश्ता हूं सूक्ष्म शरीर से ढकी हुई आत्मा, और फिर उस पर भी चिंतन करेंगे, मैं फरिश्ता इस संसार में क्यों आया हूं, बाबा का संदेश देने के लिए, सबको सकास देने के लिए, सबकी सुरक्षा करने के लिए, निर्बलों को सहारा देने के लिए। और विनाश काल में ये सीन बहुत होंगे, जिन्होंने फरिश्ते स्वरूप का अच्छा अभ्यास किया है भक्तों को दिखाई देंगे। आपदा के काल में हमारे फरिश्ते हमारे सहारे, वो कहेंगे हमारे मालिक हमारे यहाँ साथ हैं, देखो ये रहे, अब डर नहीं, डर समाप्त हो जाएगा, चिंताएं मिट जाएंगी। और एक लास्ट अभ्यास बहुत अच्छा, जो हमारे योग के लिए बहुत मददगार होगा, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, अपने दोनों स्वरूप सामने खड़े कर लो, एक लेफ्ट एक राइट, और फिर वही अभ्यास करें, मैं आत्मा यहां से निकलकर यात्रा पर चलती हूं फरिश्ता स्वरूप में बैठ गई, थोड़ा सा उसका चिंतन, मैं डबल लाइट हूँ, लाइट हाउस हूँ, बंधन मुक्त हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ। फिर वहां से निकल, फिर चली देव स्वरूप में प्रवेश कर गई, मैं देवता हूँ, संपूर्ण पावन सर्वगुण संपन्न सुखों का दाता। फिर वहां से निकली, यात्रा करेंगे, आत्मा को चलते हुए देखेंगे, फिर आ गई ब्राह्मण शरीर में, मैं बहुत भाग्यवान, भगवान के समीप उसकी नजरों में उसके प्यार में पलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। एक बात अंडरलाइन करके याद रखेंगे, चिंतन के साथ अभ्यास करेंगे, बिना चिंतन नहीं। कुछ लोग चिंतन नहीं करते तो योग भारी हो जाता है, लगता नहीं। चिंतन हमने थोड़ा थोड़ा सुनाया, और अच्छा चिंतन स्वतः ही होने लगेगा, पर यह चिंतन उन्हें ही होता है जो व्यर्थ की रुचि से बाहर निकल गए। मुझे एक बात कहनी है अवश्य, 4G मिल गया है सबको, फ्री का रिलायंस सिम डाउनलोड करने की बहुत सारी फ्री ताकत और फ्री बात करने का सुंदर अवसर, लेकिन ये क्या है, अति रॉयल माया, पतन का कारण। तो मैं सोच रहा था, मैं हंसी में कहता भी हूँ, कीर्तन मंडली तो पूरी हो गई, याद है कीर्तन मंडली किसको कहा बाबा ने, संडे को ही था ना, कीर्तन मंडली तो पूरी हो गई, अब ये फोन मंडली चालू हो गई। माताएं तो मुक्त है, बहुत भाग्यवान हो। ये नई नई माया, अभी किसी को लगेगा हम तो बात ही कर रहे हैं ना, फ्री मिला है घर बात कर लेते हैं, लेकिन योग नष्ट है। हाँ वो भी ले रहे हैं, तो व्यर्थ बढ़ जाता है, किसी को खराब चीज देखने का भी संस्कार पड़ जाएगा, तो ये वो समय आ गया है। जज साहब मुझे याद आती है बाबा की बात, बाबा कह आए थे बहुत पहले, एक दिन ऐसा आएगा सब निराधार होंगे, कोई किसी को कहने वाला नहीं होगा, सुनने वाले भी नहीं होंगे, अब तो ये भी समझ लें। इसलिए किसी को गिरना है गिरो, महान बनना है महान बन जाओ, व्यर्थ में जाना है फ्री हो, और सफल योगी बनना है तो अपने ऊपर है, ये वो समय आ गया है। कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, और ये हर एक मनुष्य के विवेक की उसके ज्ञान की श्रेष्ठ परीक्षा भी है। बहुत लोग फेल हो जाएंगे, हो रहे हैं, इसलिए जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, जो बुद्धिमान बाबा के बच्चे हैं, उनको इस माया को पहचान कर स्वयं को इससे मुक्त रखना। फोन है अच्छे यूज के लिए, देखो मेरे पास भी आया व्हाट्सएप, मुझे कहा, मेरे को रुचि नहीं थी, तो मुझे कहा आपको आज का पुरुषार्थ भेजना है 5 मिनट का, आपको ये भेजना है, तो बहुत अच्छा होने लगा। ऐसे ऐसे लोग मुझे बताते हैं, हमने आपका ये सुना था, 5 मिनट के बाद ने हमारा जीवन बदल दिया। बात तो बाबा की है, तो सदुपयोग करना चाहिए साधनों का, दुरुपयोग जो भी करेंगे वो साधन उनको नष्ट कर देंगे। तो सब विवेकशील बनकर, बुद्धिमान बनकर इन ऐसे दीदी होने के अभ्यास को लाएं। ओम शांति।
प्रेम से बस दो घड़ी, प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए।